हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 39। संवत्सर अन्ते ही भवान एकरात्रम मया ईश्वरः रंस्यति अपत्यानि च ते भविष्यन्ति अपराणि। हो संवत्सरान्ते हि भवान् संवत्सरान्ते हि भवान् एकरात्रं महेश्वरः एकरात्रं महेश्वरः रंस्यत्य पत्यानि च ते रंस्यत्य पत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि। भो भविष्यन्त्यपराणि भो संवत्सरान्ते हि भवान् एकरात्रं महेश्वरः रंसत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः संवत्सरान्ते हि भवान् एकरात्रं महेश्वरः रंसत्यत्पत्यानि च ते भविष्यन्त्य पराणि भो पत्यानीचते सरंते हर एक साल के बाद ही निस्संदेह भवान आप एक रात्रम एक रात के लिए मया मेरे साथ ईश्वर मेरे पति रंस्यति रमण करोगे अपत्यानि संतान च भी ते तुम्हारी भविष्यन्ति उत्पन्न होगी अपराणि एक बाद एक भो हे राजा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे राजा, तुम हर एक साल के बाद एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी। तात्पर्य, यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव को विपरीत ढंग का बतलाया था, किंतु पुरुरवा उस पर अत्यधिक अनुरक्त था, अतएव उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस तरह उसने हर वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उसकी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम्। साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित वैष्णव की आज्ञा लेकर इस श्लोक पर जैसा हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है वैसा बोलने का प्रयत्न करूंगा। स्वयं मैं बहुत ही अज्ञानी और भागवतम का बिल्कुल ही अशिक्षित व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी वैष्णव की आज्ञा है इस कारण। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, हे राजा, तुम हर एक साल के बाद एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी। श्रीमद् भागवतम का यह अध्याय एक प्रकार से वैष्णव के लिए थोड़ा सा शंका उत्पन्न करने वाला है। राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा मैया की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण की संज्ञा देते हैं। अमल मतलब जिसमें कोई भी मल नहीं है, जिसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमारा मन भगवान के चिंतन से दूर जा सके, और तत्व के दृष्टि से जिसमें केवल भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। यह अध्याय ऐसा है, इस अध्याय में पुरुरवा उर्वशी के ऊपर मोहित हो जाते हैं, और इतने अधिक मोहित हो जाते हैं कि उसके बिना एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते हैं। तो प्रसंग ऐसा है कि इसमें वर्णन ऐसा दिया गया है कि उर्वशी उनके सामने कुछ शर्तें रखती हैं। उन शर्तों में ऐसा था कि उनकी दो भेड़े होती हैं जिसको बहुत प्यार करती हैं, तो भेड़े कभी चोरी नहीं जाना चाहिए, और दूसरा पुरुरवा उनके सामने कभी भी सोने के व्यतिरिक्त नग्न रूप में सामने नहीं आने चाहिए। लेकिन इंद्रदेव जिनके दरबार में उर्वशी अप्सराओं में श्रेष्ठ थी, तो इंद्र को कभी लगने लगता है कि मेरा दरबार अभी सूना है क्योंकि उसमें उर्वशी नहीं है। तो गंधर्वों को आज्ञा देते हैं कि जाओ उर्वशी को लेकर वापस आ जाओ। तो गंधर्व योजना बनाते हैं और उर्वशी की प्रिय दो भेड़ों को चुरा लेते हैं रात के समय। और उस समय जब ये चोरी होती है तब उर्वशी क्रोध में आकर पुरुरवा को कठोर वचन कहती है, तुम कैसे पुरुष हो, केवल सोने के लिए तुम पुरुष हो, दिन के समय तुम पुरुष नहीं हो, या दिन के समय तुम पुरुष भाव दिखाते हो, सोते समय तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे वो शब्द कहती है। तो उस शब्द को सुनकर पुरुरवा इतने क्रोधित हो जाते हैं कि बिना कपड़े पहने वो भेड़ों को वापस लाने के लिए जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो वो नग्न है। तो उर्वशी उसको देखती है, वो कहती है कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी, और इसको इस प्रकार से वो उनको छोड़ के चली जाती है। अभी समझने की बात ऐसी है कि उर्वशी ने ऐसी शर्तें रखी क्यों? उसको मालूम था कि पुरुरवा उन शर्तों का पालन नहीं करेंगे और वो उनको छोड़कर वापस इंद्र के दरबार में जा सकती हैं। क्योंकि जो उर्वशी हैं उनको अभी भगवान ने इस सृष्टि में हर व्यक्ति को एक विशेष कार्य दिया हुआ है। अभी वो क्यों दिया हुआ है? वो हमारी कर्म वासना के अनुसार दिया गया है। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है। कभी कभी हम देखते हैं कि संसार में जैसे आज के समय बातें होती हैं तो जन साधारण जो है वो बड़ा विचार करता है कि ये सिने स्टार या जो सिने तारिकाएं हैं ये कितनी सम्मानित हैं। सम्मान तो मिल रहा है उनको। यदि देखा जाए तो आज के समाज में इस कलयुग में सिने तारिकाओं को और सिने जो एक्टर्स हैं उनको सबसे अधिक सम्मान मिल रहा है। सम्मान मतलब क्या? जो लोग हैं वो उनको मानते हैं, उनके पीछे भागते हैं और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उनकी तस्वीरें लगाते हैं। इस प्रकार से चल रहा है, हम देख रहे हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है तो उनके जो ब्लॉग्स होते हैं या उनके जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर कितने लोग अपने कमेंट्स डालते हैं, उसके हिसाब से उनकी ख्याति या प्रसिद्धि देखी जाती है। तो है, उनकी कर्म वासना थी कि उनको बहुत प्रसिद्ध और इस प्रकार सिने तारिका बना था। तो आजकल बहुत सारी सिने तारिकाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको मिलने के लिए बहुत सारे पुरुष संजोते हैं, अपने मन में बड़े विचार संजोते हैं कब उनका उनके साथ एक बार बैठने मिलेगा। ऐसा है तो जैसी वासना होती है उसके हिसाब से व्यक्ति को जीवन मिल जाता है। तो जैसे इस कर्म या मर्त्य लोक में व्यक्ति को जन्म मिलता है वैसे ही उसी कर्म के अनुसार उसे देव योनि भी मिलती है। तो ऐसे ही कर्म वासना के अनुसार अप्सरा की योनि मिलती है। उस अप्सरा की योनि में अप्सराएं किसी भी पुरुष के साथ बिना किसी हिचक के साथ संग कर सकती हैं और उनको कोई दोष भी नहीं लगता है। ان کو کوئی پاپ بھی نہیں لگتا ہے. تو بھگوان کی یہ سرشتی کی ایسی ویوستھا ہے. تو اروشی اسی پرکار سے اپسرا ہیں, لیکن وہ کسی ایک پروش سے جڑ کر نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ وہ اپسرا ہیں. اس بھولوک میں جو استری جنم لیتی ہے اس کے لیے نیم بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پتی کو سمرپت رہے. جب وہ اپنے پتی کو سمرپت رہتی ہے, وہ پاتیورت کا پالن کرتے ہوئے اپنا جیون جیتی ہے, تبھی اسے آدھیاتمک روپ سے پرگتیشیل مانا جاتا ہے. لیکن بھگوان نے جیسے کیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں ادھارن کے لیے گجرات, گجرات کو کیا بتایا گیا ہے, ڈرائی اسٹیٹ بتایا گیا ہے. ڈرائی اسٹیٹ مطلب جہاں پر شراب پینا پینے کی انومتی نہیں ہے. لیکن اسی گجرات سے باہر آتے ہیں واپی کے پاس میں, تو وہاں پر سلواسا اور یہ کھیتر پڑتا ہے, دمن کھیتر پڑتا ہے. تبھی وہ باؤنڈری کے باہر آتے ہی ساتھ دارو کی دکان کی لائن چالو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ گجرات کے اندر آپ کو پروانگی نہیں ہے, لیکن اس سیما کے باہر جا کر آپ جتنا چاہیں اتنا پی سکتے ہیں, پھر پی کر واپس آ سکتے ہیں. تو سرکار کے نیم ہے کہ آپ کو گجرات کے اندر آپ پیئیں گے تو آپ کو دنڈ ملے گا, لیکن اس کے باہر پی کر واپس آئیں گے تو کوئی دنڈ نہیں. تو اسی پرکار سے اس سرشتی میں الگ الگ نیم ہیں. تو جو اپسرا کی یونی ہے اس کو کوئی دنڈ نہیں ہے, لیکن اس مرتی لوک میں جو نیم ہے کہ یہاں پر بھی آپ ویسا کاریہ کریں گے تو آپ کو دنڈ ہے. لیکن یہ جو سب نیم ہیں سنسار کے وہ کیسے ہیں, روپات کہتے ہیں اس کے لیے کہ دس مٹیریل ورلڈ از اے بیڈ پلیس, سنسار جو ہے ایک خراب جگہ ہے. وی ہیو ٹو یوز میک یوز نو بیسٹ یوز آف اے بیڈ بارگین. روپات کہتے ہیں سمجھ لو آپ گئے کوئی وستو خریدنے کے لیے گئے, آپ نے دیکھا کوئی اس پرکار سے کوئی وستو ہے الیکٹرانکس کی یا کوئی کپڑا ہے, اور آپ کپڑا دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے, تو سامنے والا بولتا ہے 1000 روپے میٹر. تو آپ سوچتے کہ شاید ہو سکتا ہے, کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے, کیونکہ سامنے والا جو بولتا ہے ہمارے من کے اوپر اتنا پربھاؤ کرتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ شاید ہم غلط ہیں. ویکتی کے اندر ایک سندیہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وچار کرتا رہتا ہے. تو یدی دکاندار نے بولا 1000 روپے میٹر ہے, تو بولیں گے باپ رے بڑا مہنگا کپڑا ہے, ہو سکتا ہے وہ دیکھنے سے تو لگتا ہے, ہم کو لگتا ہے دیکھنے سے تو لگتا ہے 100 روپے میٹر ہے, لیکن دکاندار 1000 بول رہا ہے تبھی کیا کرو گے؟ تم بولیں گے چلو میں آپ کو ہے نا ایسے تو 100 روپے دینا چاہیے, لیکن ہم لوگ سوچتے کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں. وہ بولتا ہے کہ فرینچ کریپ ساڑی ہے. اب یہ بتانے کی بات ہے, کل کی ہی کل یا پرسوں کی بات ہے, ایسے ہی مجھے کرشن اور کنس سی ڈی لینا تھا, ابھی نیا نکلا ہوا ہے, بچے لوگ ضد کر رہے تھے. تو میں جوہو مندر گیا ہوا تھا, جوہو مندر سے واپس آتے آتے بچوں نے کہا کہ وہ سی ڈی چاہیے, تو وہ سی ڈی ملتی ہے مال میں. تو مطلب چلو مال میں, تو پتنی نے کہا کہ آپ دھوتی کرتا پہنے ہوئے مال میں جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے, مطلب چلنا ابھی بچوں کے لیے سی ڈی لینا ہے چلو. تو گئے وہاں پہ, گئے وہاں پہ تو دکان سے سی ڈی لیا, واپس آ رہے تھے. تو ابھی ایسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے استریوں کی نظر تو سب طرف رہتی ہے, تو باجو میں ہی دکان تھی تو وہاں پر ساڑیاں لگی ہوئی تھی باجو میں, تو ایسی نظر پڑی. تو اس نے بتایا کہ باپ رے اس مال میں کتنا مہنگا ملتا ہے, یہی ساڑی میڑا روڈ میں شاید 100 روپے کی ملے گی, 200 روپے کی ملے گی, یہاں پر 700 روپے کا لیبل لگا کے رکھا ہوا ہے. تو مال تو وہی ہے, لیکن مال میں اس مال کو مہنگا لیبل لگایا جاتا ہے, تو ہم کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت مال کے اندر مل رہا ہے, ایئر کنڈیشنڈ ہے تو اس کے اندر یہ مل رہا ہے, مطلب یہ ضرور ہوگا. اس کی قیمت اتنی ہوگی. اور مال میں جا کے ہم وہی 100 روپے کی چیز کو 700 روپے دے کے خریدتے ہیں, ایسا ہو رہا ہے. تو ویسے ہی کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ مال میں جو وستو مل رہی ہے بہت اچھی ہوگی, تو اسی پرکار سے یدی کوئی دکاندار کہتا 1000 روپے میٹر کپڑا ہے تو ہم کو لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور پھر ہم اس کے ساتھ بارگین کریں گے تو بولیں گے چلو 1000 کا چلو تم 800 میں دے دو, 700 میں دو, چلو 600 روپے میں دے دو. 100 روپے کپڑا ہم 600 روپے دے کے آئیں گے کیونکہ ہم نے بیڈ بارگین کی ہوئی ہے, ہم نے غلط دکان میں غلط جگہ پر قدم رکھا ہوا ہے. تو ویسے ہی یہ سنسار ہے, یہ سنسار میں آپ کتنا اچھا سودا کرنا چاہتے نہیں کر سکتے, تو خراب سودا ہے ابھی اس کو کتنا بچا سکتے ہو اتنا بچانا ہے. تو سنسار کے جو بھی نیم ہیں ہم جس کو بولتے ہیں کہ یہ اچھا ہے برا ہے, کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے, تو دیکھا جائے گا تو پورا سنسار یہ پورا برہمانڈ ہی ایک بری وستو ہے. کیوں بری وستو ہے؟ شریمد بھگوت گیتا میں بتایا گیا ہے جنم مرتیو جرا ویادھی دکھ دوشانو درشنم نا آپنو مہاتمانم سنسدھیم پرمام گتھا. جو مہاتما ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس سنسار کو, وہ دیکھتے کہ سنسار میں کیا ہے, جنم مرتیو جرا اور ویادھی یہ دوش ہے, اور دکھ دوش انودرشنم. انودرشنم مطلب ایسا نہیں کہ ایک بار دکھتا ہے, بارمبار دکھتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے کہ سنسار میں جو بدھیمان ویکتی ہے وہ سوچے گا کہ مجھے یہ بار بار دکھ رہا ہے, بار بار مجھے یہ دکھ کا درشن ہو رہا ہے, تو کیوں میں اس دکھی سنسار میں رہنا چاہتا ہوں, کیوں میں اس سنسار میں سکھ کا سکھ کی اچھا کر رہا ہوں. تو نہ اپنو انتی تو وہ اچھا نہیں کرتے ہیں. مہاتمانم سنسدھیم پرمام گتا, اور یہ مہاتما کیا اچھا کرتے ہیں, پرم سدھی کی اچھا کرتے ہیں. سنسدھیم پرمام گتا جو کہ شیل پروپاد ہم کو سکھانے کے لیے آئے, جو ہم یہاں گیتا بھاگوت کے مادھیم سے سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے جیون کو پورن بنا لیں. بھگوان کرشن بھی بتاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں, یہ سنسار کیسا ہے, دکھالیم اشاشوتم. بھگوان سوئم کہتے ہیں کہ سنسار دکھالے ہے, اشاشوتم شاشوت نہیں. بھگوان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سکھ ہیں سنسار کے کیسے ہیں, یہی سنسپرشجا بھوگا دکھ یون ایوتے آدینت ونت تو کونتے نہ تیشو رمتے بدھا. اس سنسار کے جو سکھ ہے وہ کہتے ہیں اسپرش سے اتپن ہوتے ہیں, اندریوں کا اندریہ وشیوں سے اسپرش ہوتا ہے تو کچھ آنند انبھو ہوتا ہے. آنکھیں یدی سندر درشیہ دیکھتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے, من کے اندر پرسنتا چھا جاتی ہے, سندر درشیہ ہے. کان سندر دھنی کو سنتے ہیں تو پرسنتا لگتی ہے, ایسے ہی شریر کو کوئی سکھمے وستو کا اسپرش ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے. بہت گدگدی گدی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے واہ کتنا اچھا ہے, لیکن کیسا ہے یہ سکھ, کیسا ہے, آدی انت, اس کا ایک آدی ہے اور ایک انت ہے. اس کارن بدھا جو بدھیمان پروش ہے نہ تیشو رمتے, رمتے مطلب ہمیشہ اس میں ہی لین رہنا, نہ بدھا اس میں گمان نہیں ہوتے. ابھی سنسار میں ہیں تو ہم ہمارے کرموں کے انوسار سے سکھ اور دکھ آئے گا. ایک بھکت کا سبھاؤ کیا ہوتا ہے, وہ تمو سکھے چ دکھے چ تتھا ماناپ مانے ہو تلیہ نندا ستر مونی. ایک بھکت کیسا ہے, وہ سکھ اور دکھ میں کیسا ہے, سمو مطلب نہ وہ سکھ میں بہت زیادہ ابھیبھوت ہو جاتا ہے نہ دکھ میں بہت زیادہ وہ ڈوب جاتا ہے, نہ مان اور اپمان میں وہ اتنا زیادہ پربھاوت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک بھکت ستو گن میں ہوتا ہے. جو ویکتی ستو گن میں ہوتا ہے وہ سنتلت ویکتی ہوتا ہے, अति नहीं होता है, अतिवादी, अतिरेकवादी, जैसे आजकल बहुत चर्चा चल रही है, अतिरेकवादी, आतंकवादी, ये सब लोग कौन है? अतिरेकवादी, भगवान के नाम पर हैं लेकिन कैसा है? अतिरेक है, एक्सट्रीमिस्ट है, तो यह भी योग्य नहीं है। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है? भौतिकवाद, वो भी बहुत ज्यादा भौतिकवाद में डूबे हुए लोग हैं, वो भी अतिरेक है एक प्रकार का। लेकिन एक भक्त क्या होता है? समन्वित होता है, भगवान को समर्पित होता है, संसार में होता है लेकिन संसार का नहीं होता है, संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करता है लेकिन उन वस्तुओं से मोहित और आसक्त नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब वह भक्तों के संग में रहकर श्रवण कीर्तन करता है, जब वो गुरु महाराज के बताए अनुसार भक्ति का अभ्यास करता है, जब वह भगवान की भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लेता है, तब वो अभिभूत नहीं होता है। तो यह जीवन जीने का सिद्धांत गीता और भागवत में सिखाया गया है, और इसके विपरीत जो सिद्धांत है वो कैसा है? अतिरेकवादी। कभी कभी भक्ति के मार्ग पर, भगवान की श्रद्धा के नाम पर भी लोग अतिरेकवादी बनते हैं, वो भी योग्य नहीं है। तो जितना आवश्यक है, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति का त्याग नहीं कर सकते, श्रील प्रभुपाद बताते हैं इंद्रिय तृप्ति नमक के समान है, न ज्यादा न कम। यदि खाने के अंदर बहुत ज्यादा नमक है तो वो भी खाना बिना मतलब खाने लायक रहता नहीं, और नमक नहीं है तो वो खाने का कुछ आनंद नहीं आता है। लेकिन योग जितना चाहिए उतना नमक है तो वो हम भोजन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति उसके समान है, न अधिक न कम, जितना सेवा के लिए आवश्यक है उतना ही इंद्रिय विषयों को स्वीकार करना चाहिए, और सेवा के व्यतिरिक्त इंद्रिय विषयों का त्याग करना चाहिए जो अनुकूल नहीं है। तो यहां पे जो प्रसंग है वो श्रीमद् भागवतम में क्यों है? गिरिराज महाराज वो एक बार इसी विषय पे बता रहे थे, तो बता रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद थे उस समय श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणियां लिखते थे, तात्पर्य लिखते थे, और एक एक खंड में श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें प्रकाशित होती थी, तो सारे भक्त लोग आतुरता के साथ प्रतीक्षा करते थे कि अभी पांचवा कैंटो आ गया है, छठवां स्कंध आ गया है, सातवां आ गया है, आठवां, और एक एक करके पुस्तक आती थी, दो तीन महीने के अंतर से एक एक पुस्तक आती थी, और सारे भक्त लोग बहुत आतुर कि अभी कौन सी नई पुस्तक आने वाली है, हम पढ़ेंगे। तो जब ये पुस्तक आई थी इस विषय के ऊपर तो सारे भक्त लोग ये कौन सा विषय है कि पुरुरवा उर्वशी पे मोहित हैं, और उर्वशी बता रही है स्वयं जो स्त्रियां चंचल प्रवृत्ति की होती हैं उन भाव क्या होता है, चंचल प्रवृत्ति की स्त्रियों का स्वभाव वर्णन किया गया है। तो वो पढ़ रहे हैं सब ब्रह्मचारी सन्यासी और प्रभुपाद के गृहस्थ शिष्य, बोलते ये क्यों दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। और हम देखते हैं कि इस अध्याय के बाद ये प्रसंग समाप्त हो जाता है, और उसके बाद कोई दूसरा ही प्रसंग परशुराम जी का है इतिहास है वो बताया गया, तो सारे भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा ये प्रसंग क्यों दिया गया है, इसका क्या अर्थ निकलता है। यहां पे तो केवल ये दिखाया गया कि पुरुरवा उर्वशी के ऊपर आसक्त थे और उस आसक्ति में इतने थे कि उर्वशी ने उनका त्याग किया, फिर बाद में उन्होंने अनुनय विनय किया, हाथ जोड़कर विनंती की कि मुझे आपका संग चाहिए। तो यहां उर्वशी बता रही है आज के श्लोक में, ठीक है एक रात के लिए मैं साल में आपको अपना संग दूंगी, और उसके बाद वो भी छोड़ के चली जाती हैं। फिर पुरुरवा बहुत दुखी हो जाते हैं, वो यज्ञ गंधर्वों को प्रसन्न करते हैं, तो उनको अग्निस्थली नाम की एक उर्वशी के सदृश स्त्री प्राप्त होती है, लेकिन वो कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए। उनको उर्वशी के प्रति बहुत आसक्ति होती है। बाद में वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए यज्ञ वगैरह करते हैं और उसके बाद गंधर्व लोक को प्राप्त करते हैं और अध्याय समाप्त हो जाता है। तो लगता है कि ये क्या दिया गया है कि हम यज्ञ करें अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए, गंधर्व लोक को प्राप्त करें, वहां पर जाके सुख उपभोग लें, ऐसा कैसे है? तो गिरिराज महाराज बता रहे थे कि उनके मन के अंदर बहुत प्रश्न था कि ऐसा कैसे। लेकिन बाद में 11वें स्कंध में 26वां अध्याय, उसका नाम है ऐल गीत। उस ऐल गीत को पुरुरवा उन्होंने गाया हुआ है और उसमें वो वर्णन करते हैं कि स्त्री के प्रति आसक्ति कितनी भयानक होती है और किस प्रकार से वो उस आसक्ति में फंस गए, और इसका वर्णन उन्होंने 11वें स्कंध में 26वें अध्याय में किया हुआ है। तो वो बता रहे थे कि जब हमने वो पढ़ा तब हम समझ पाए कि ये वर्णन जो है 9वें स्कंध में है, उसके अर्थ 11वें स्कंध में ऐसे क्यों आया हुआ है। तो बता रहे थे, उन्होंने वर्णन किया कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे प्रसंग बीच बीच में क्यों डाले गए। कभी कभी हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है कि आप ये करो तो आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है या आपको कोई विशेष समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे प्रसंग बीच बीच में डाले गए हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह पुराण अमल पुराण नहीं है? यह अमल पुराण है, लेकिन आचार्य बताते हैं कि जैसे शेरनी का जो दूध होता है, शेरनी का जो दूध होता है उसको सोने के बर्तन में रखा जाता है। यदि आप उस दूध को मिट्टी के बर्तन में रखोगे तो वो फूट जाता है, वो उसको शेरनी के दूध को वो सहन नहीं कर सकता है। उसको सोने के बर्तन में रखने पे ही वो शेरनी का दूध जो रहता है वो खराब नहीं होता है, नहीं तो बाकी बर्तन में तुरंत खराब हो जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम का जो विषय है उसको कौन ग्रहण कर सकता है? जो स्वर्ण के समान पात्र, मतलब जिसकी चेतना अच्छी है, वही इस अमृत को स्वीकार कर सकता है, और जिसकी चेतना शुद्ध नहीं है वो इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद भी उसका सही प्रकार से उपयोग नहीं कर सकता है। ज्ञान वही है, तो इस कारण आचार्य बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक कथा बता रहे थे या जब सूत गोस्वामी शौनक वगैरह ऋषि मुनियों को बता रहे थे तो वहां पर सब प्रकार के भक्त थे। कुछ शुद्ध भक्त थे, कुछ मिश्र भक्त थे, कुछ जैसे कथा चलती रहती है तो कुछ जिनको कुछ जानकारी नहीं होती है वो भी लोग आके बैठ के कथा सुनने लगते हैं। तो जो कथा सुनने के लिए जो श्रोतागण होते हैं उनमें अलग अलग गुण वाले व्यक्ति होते हैं, अलग अलग इच्छा वाले व्यक्ति होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंद के बाद दशम स्कंद का आरंभ करना चाहते थे, और दशम स्कंद को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम इन 9 स्कंधों को समझकर पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए अपने मन को तैयार नहीं करते हैं। जब तक हमारे मन में शुद्ध भक्ति की समझ नहीं है तब तक 10वें स्कंद को हम सुनेंगे लेकिन उसका प्रभाव कैसे होगा? जैसे शेरनी का दूध दूसरे बर्तन में खराब हो जाता है। तो इस कारण उन्होंने ये बीच में प्रसंग डाले हुए हैं कि जिसकी जैसी मनोवृत्ति है वो उस हिसाब से अपना उपदेश ग्रहण करेगा और जाएगा। कोई ये पढ़ के समझेगा कि चलो ये अच्छी बात है, यदि हमको अप्सरा को प्राप्त करना है तो हम कर्मकांड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
तो जिसकी जैसी इच्छा है उस हिसाब से वो गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम अमल पुराण क्यों है? क्योंकि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने केवल ये प्रसंग बताकर यहां समाप्त नहीं कर दिया है। बाद में 11वें स्कंद में बताया कि ये जो प्रसंग है कितना दुखदायी था। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि यदि किसी प्रसंग से दुख आने वाला है तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊं। इस कारण ये प्रसंग यहां बताया गया है। और ये प्रसंग बहुत हमें स्वयं का विश्लेषण करने के लिए है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं। हम भले ही कितना भी कहें, जब तक हरिनाम की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, जब तक हम अपराध रहित हरिनाम का जप नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं बनी रहती। इस कारण चैतन्य महाप्रभु वो शिक्षाष्टकम का वर्णन करते हैं, तो जब उन्होंने कहा है न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, ये वर्णन किया है कि भगवान मैं कुछ नहीं चाहता हूं, संसार का कोई सुख। उसके पहले क्या बताया उन्होंने? उसके पहले बताया हुआ है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। हम सभी को अत्यंत नम्र होना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए, दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर होना चाहिए, स्वयं के लिए सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मन की स्थिति में जब हम निरंतर भगवान का नाम लेंगे तब जाके हम कह सकते हैं उसके आगे का श्लोक न धनम न जनम न सुंदरी। नहीं तो केवल बोलना होगा, वो हृदय से आने वाला नहीं होगा। क्योंकि जैसे यदि कोई दंपत्ति है उनको पुत्र चाहिए और शादी ठहरी हुई है, वो शादी के दिन ही शादी होती है और शादी की रात्रि है और उस दिन वो जो स्त्री है वो कहती पति से मुझे अभी मैंने सुना था बचपन में मेरी माँ बताती थी कि आपको है ना बच्चे कब मिलेंगे, जो छोटी बच्चियां पूछती रहती है कि मम्मा मुझे भी छोटा बच्चा चाहिए, बोलते हाँ विवाह के बाद तुमको मिलेगा। तब उनको समझ में नहीं आता है, तो समझ लो बाल बुद्धि से कहती है कि मुझे आज की रात ही बच्चा चाहिए, मुझे आज ही तुरंत पुत्र चाहिए, तो नहीं मिल सकता है। उसकी विधि है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और प्रतीक्षा करने के पश्चात कष्ट लेने के पश्चात वो पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो जैसे संसार में भी कोई भी कार्य अपने आप फल नहीं देता है, तो वैसे हमारे हृदय में भक्ति का फल बिना प्रयास के कैसे हो सकता है? यदि हम शुद्ध भक्ति की इच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। यदि हम केवल भगवान के पास आके कहेंगे भगवान मुझे शुद्ध भक्त बनना है, तो हमारा इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इरादे से केवल अच्छी भावना से शुद्ध भक्ति पर नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो हर भक्त को प्रार्थना करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई होती, तुरंत प्राप्त हो गई होती। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि क्यों प्राप्त नहीं होती है। वो बताते हैं भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भगवत प्रेमस्य कथम अभ्युदयो भवेत। वो बताते हैं कि जब तक भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मतलब भौतिक भोग और मुक्ति मतलब संसार अत्यंत दुखमय है इससे मुक्त हो जाना है, ऐसी स्पृहा, स्पृहा मतलब एक अंदर इच्छा बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? पिशाची। कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि कोई पिशाच या भूत किसी को पकड़ लेता है, तो जब वो पिशाच किसी को पकड़ लेता है और व्यक्ति बोलता है तो व्यक्ति नहीं बोलता है, वो कौन बोलता है? पिशाच बोलता है। तो वैसे ही भुक्ति और मुक्ति की इच्छा हमारे हृदय में है, तब तक हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किसकी प्रार्थना है? वो पिशाची की प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना नहीं है। तो हम बोलते हैं भगवान के सामने, भगवान मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए। लेकिन जब तक भुक्ति की इच्छा है तब तक हमारी जो प्रार्थना है वो कैसे फल देगी? तावत भगवत प्रेमस्य, वो कहते तब तक भगवत प्रेम का कथम, कैसे अभ्युदय होगा, उदय होगा। तो इस कारण यदि शुद्ध भक्ति की इच्छा है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न क्या है? वो तृणादपि सुनीचेना सरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरि, इस श्लोक में बताया गया है। तो जब हम इस श्लोक को आत्मसात करेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन आचरण करेंगे, तब हमारे हृदय से वो सही में प्रार्थना निकल सकती है, न धनम न जनम, ये प्रार्थना हृदय से निकल सकती है। और जब वो प्रार्थना हृदय से निकलेगी तो उसके बाद उसके आगे का लक्षण प्रकट होगा। पांचवें श्लोक में क्या बताया गया है? अई नंद तनुजा किंकरम पतितम मम, फिर सच्ची में हम कहेंगे कि इस भव सागर में हम गिर गए हैं। नहीं तो हमारे मन के ऊपर संसार का जो भ्रम है इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि हमारा मन इतना अभी तक कमजोर है कि थोड़ा भी यदि हम विषयों का दर्शन करते हैं तो हमारे मन के अंदर उसका संग लेने की इच्छा प्रकट हो जाती है। हमारे मन की भावना आज ऐसी है। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय केवल एक ही है कि हम जो प्रामाणिक वैष्णव हैं उनकी बिना किसी कपट के शरण लें, ना कोई बिना कोई कपट भाव रखे हुए शरण लें और भगवान के नाम की शरण लें। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज वो कहते थे कि भगवत भक्ति मतलब क्या है? भगवत भक्ति मतलब कृष्ण क्रंदन है। वो कहते भगवत भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम कितना शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, कितना ज्यादा हम पुस्तकों का वितरण करते हैं, कितना ज्यादा हम भगवान की सेवा के लिए धन राशि को देते हैं, ये भक्ति के अंग हैं। भक्ति और भक्ति के अंग में अंतर होता है। भक्ति के अंग को पूर्ण भक्ति नहीं माना जा सकता, ये चरण सिद्धांत बताया हुआ है। लेकिन उन भक्ति के जो अंग है उसमें से एक भक्ति का मार्ग है जिसको पूर्ण भक्ति का प्रतिनिधि बताया गया है, और वो है कृष्ण कीर्तन। कृष्ण कीर्तन एकमात्र भक्ति का ऐसा अंग है जिसको संपूर्ण बताया गया है। बाकी जितने भी भक्ति के अलग अलग हम कार्य करते हैं वो भक्ति के अंग हैं, वो भी आवश्यक हैं, उससे भी हमारी भक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन केवल वह करने मात्र से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी भक्ति परिपूर्ण है। इस कारण आचार्य बताते हैं कृष्ण कीर्तन कृष्ण क्रंदन, मतलब जब हम भगवान कृष्ण का कीर्तन इस भावना में करेंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक बालक आतुर भाव से अपनी मां को पुकारता है तो उस पुकार को कहा गया है क्रंदन। तो जब भगवान का नाम हम उस भावना में लेंगे, केवल वही इस कलयुग में पूर्ण भक्ति या संपूर्ण भक्ति का मार्ग बताया गया है। और उसको छोड़ के हम बाकी जो कर रहे हैं वो सेवा है। इसका श्रील प्रभुपाद बताते थे कि 99% भगवत भक्ति में प्रगति भगवान के अपराध रहित नाम संकीर्तन से होती है, और 1% बाकी हम जो सेवा करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका उसकी गणना केवल 1% है। और अपराध रहित भगवान का संकीर्तन 99%। तो यहां पर जो बताया गया है, ये हम सबके अंतर मन को विश्लेषण करने के लिए है, क्योंकि अभी तक हमने भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है, तो ये सब भौतिक भोग की इच्छाएं हृदय में होती हैं। और इस भागवतम को अध्ययन करके यदि हमारे अंदर वो इच्छा है, तो हमें समझ सकते कि ये इच्छा भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं है। इस इच्छा के लिए हम जो भी समय लगाएंगे वो समय की व्यर्थता है, समय को नष्ट करना है। और इस कारण हम श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलें, अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को बाजू में रखें, भगवान के नाम का शरण लें और जितना हो सके उतना प्रयत्न करें कि अपराध रहित भाव से हम भगवान का नाम ले सकें। तो ये सब जो इच्छाएं हैं वो कैसे हो जाएंगी? जैसे हम गेहूं या चावल के बीज को यदि भून देते हैं, एक गर्म कढ़ाई में रख के भून देते हैं और उसको फिर से डाला जाता है, तो उससे कोई पौधा नहीं निकलता है। लेकिन यदि उसको भुना हुआ नहीं है और आप डालेंगे जमीन पे, तो तुरंत उसमें से वो पौधा निकल आएगा। तो भगवान का अपराध रहित नाम संकीर्तन, नाम जप, वो हमारी सारी इच्छाओं के जो बीज हैं उसको वो भून सकता है, ताकि फिर से वो भले ही वो बीज दिख रहा है लेकिन उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा। वो केवल भगवान के नाम की शक्ति से ही संभव है। इस कारण शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि यह त्रिकर्म नाशनम शब्द प्रयोग में लाया गया है कि कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें बताए गए हैं 3 प्रकार कर्म, उसके दो भाग हैं, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म और संचित। ये तीनों प्रकार के कर्म को त्रिकर्म नाशनम, भगवान का अपराध रहित हरि नाम संकीर्तन वो कर सकता है, नाश कर सकता है। और वही हम सबके लिए एक आशा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई एक प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, या कोई टिप्पणी है या कोई स्पष्टीकरण बताना चाहते हैं बताना। हरे कृष्णा, भक्ति के 64 अंग बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, 64 अंग बताए हैं, 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसकी शुरुआत होती है आदौ गुरु पदाश्रय, एक गुरु के चरण कमलों को स्वीकार करना, ये पहला अंग है। ऐसे ही बहुत सारे अंग बताए गए हैं कि कैसे व्यक्ति को मंदिर में भगवत भक्ति का पालन करना चाहिए, नवधा भक्ति के अंग जो हैं वो भी उसमें आते हैं। आप हमारे स्टॉल से पुस्तक ले सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें सारे 64 अंग दिए गए हैं। मेरी हाँ, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में ही शील रूप गोस्वामी बताते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। उस समस्त अंगों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, निरपराधे नाम लैले, केवल उसको निरपराध भावना से लेने से पाय प्रेम धन, व्यक्ति भगवान का प्रेम धन प्राप्त कर सकता है। बाकी सारे अंगों को करने के लिए कुछ न कुछ नियम लगते हैं। जैसे यदि कोई भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना चाहता है तो ऐसा बताया गया है कि ये न जन्म शतय पूर्वम वासुदेव समर्चितम तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठन्ति राजना। जिसने 100 जन्म भगवान वासुदेव की सम अर्चितम बहुत अच्छे से पूजा आराधना की है, ऐसे व्यक्ति के तन मुखे, उस व्यक्ति के मुख में हरि नाम हमेशा के लिए बना रहता है। मतलब निरपराध, जो अपराध के साथ नाम ले रहा है वो हमेशा कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता है। वो जो निरपराध भाव से नाम ले रहा है वो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सकता है, ये बताया गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।